ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चों को बाबा ने त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनाया है। तीनों कालों में हम क्या थे, क्या पार्ट हमने बचाया है, वो बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई हैं और वो श्रेष्ठ स्मृतियां ही हमारा सम्मान है। बाबा ने हमें स्मृति दिलाई सतयुग के आदि में हम देवात्मा थे, पवित्र थे, पूज्य थे और सभी के पूर्वज भी थे। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, डबल ताजधारी थे। तो हम कितनी ऊंच श्रेष्ठ आत्माएं थी और अब फिर से 5000 वर्ष के बाद हम वही बन रहे हैं। फिर द्वापर युग में भले ही हम पुजारी बने लेकिन हमारे जो पूज्य चित्र थे उन चित्रों का हम भक्त बन करके और साथ साथ में और भक्त आत्माएं भी उनका पूजन गायन करते रहे। आज भी भक्त कितनी श्रद्धा से देवताओं की पूजा करते हैं और वर्तमान संगम युग पर तो बाबा ने जो हमें टाइटल्स दिए हैं जिन्हें हम सोमान कहते हैं, वो टाइटल और सोमान तो पूरी दुनिया में कोई कितना भी ऊंच है, कितने भी नामी ग्रामी हो, कोई राजनेता है, अभिनेता है, महान आत्मा है, धर्मात्मा है, किसी को भी नहीं है। 10 अक्टूबर को जो बाबा की मुरली चली, बाबा ने कहा ना कि इतनी लंबी सोमानों की माला है कि जैसे वो लोग माला जप के सिमरन करते हैं तो अगर हम भी उसका सिमरन करें तो कितना हो जाएगा। तो हम कौन है, मैं आत्मा हूँ, ये परिचय तो बाबा ने हमें दिया, लेकिन स्वमान है मैं कौन सी आत्मा हूँ, ये स्मृति लाना। तो हम सुनकर तो बहुत खुश होते हैं कि बाबा हमें कितनी ऊंची नजर से देखते हैं, या भगवान ने, भाग्य विधाता ने जो हमें भाग्य दिया है वो भाग्य कितना श्रेष्ठ है, लेकिन कई बार हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। हम समझते हैं हम घर गृहस्थ में रहने वाले, जैसे माताएं सोचेंगे हम साधारण माताएं हैं, भगवान कहते हैं हम मात्र सर्वशक्तिमान हैं, हम पद्मा पदम भाग्यवान हैं, हम विजयी रतन हैं, विघ्न विनाशक हैं, कितने जो भी हमारे टाइटल हैं संगम युग के, तो सोचते हैं कि कहाँ हैं। तो अगर हम उसमें संशय रखते हैं, उसे स्वीकार नहीं कर पाते, तो उस स्थिति की सीट पर हम सेट नहीं हो पाते हैं। और उसका कारण क्या है, एक कहानी से हम समझेंगे उसको, कि एक बार एक राजा था, उसका जो बेटा माना शिशु था अभी, उसको भेड़िये उठाकर ले गए और बहुत सैनिकों को भेजकर ढूंढवाया, लेकिन वो बेटा मिला नहीं। तो वास्तव में जो भेड़िया था उसका भी बच्चा था, लेकिन वो बच्चा कोई जंगली जानवर खा गया होगा, तो वो ढूंढते ढूंढते वो भेड़िया वहां पहुंचा और उसने राजा के शिशु को उठा लिया, उसने अपना ही बच्चा भेड़िया समझा उसको। और वो उसको अपने ग्रुप में, भेड़ियों के ग्रुप में ही उसको पालने लगी। तो वो जो राजकुमार था, शिशु राजकुमार, वो भेड़ियों के बीच में बड़ा होने लगा। तो थी तो मनुष्य की बुद्धि, तो जैसे बढ़ने लगा उसी अनुसार जैसे भेड़िये चलते थे, चार पांव से चलते हैं, तो उसने भी अपने शरीर को ऐसे ढाल लिया कि हाथ को भी पांव में बदल दिया और उसी तरह से चलने लगा वो बच्चा। मुंह से वैसे ही आवाज निकालने लगा जैसे भेड़िया आवाज निकालते हैं, कि वही वो सुनता था उसी आवाज को। उसके नाखून बड़े बड़े हो गए, धीरे धीरे शरीर पर उसी तरह के थोड़े बाल भी आने लग गए ना, शरीर की प्रकृति वैसी ही बनने लगी। और करीब 5 साल से ऊपर समय हुआ, राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और शिकार का पीछा करते करते, जैसे होता है बहुत अंदर जंगल में चले जाते हैं, तो वही भेड़ियों का झुंड से उसका सामना हो गया। तो जो भेड़िये थे वो तो भाग गए, क्योंकि तेज भाग सकते हैं भेड़िये तो, लेकिन जो मनुष्य भेड़िया था वो पीछे रह गया। तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, उठा लिया उसको, और उठा करके जब लेकर आए तो देखा कि शक्ल से तो वो मनुष्य लगता है, तो ये भेड़ियों के बीच में कैसे आ गया। तो राजा ने कहा इसको महल में ले चलो, उठाकर महल में ले आए और उसको पूरा साफ किया गया, उसको नहलाया गया, उसके नाखून काटे गए, बाल हटाए गए। तो कुछ निशानी थी उस राजकुमार की जिसको भेड़िये उठा करके ले गए थे, तो वो निशानी से पता चला कि ये तो वही राजकुमार है जो बचपन में गुम हो गया था। राजा को ये नहीं मालूम था कि भेड़िये उठा के ले गए, उनके अनुसार गुम हो गया, तो गुम हो गया ये वही राजकुमार है। लेकिन अब ये राजकुमार तो रहा नहीं, ये तो जानवर बन चुका है, इंसान भी नहीं रहा। तो बड़ा मुश्किल, कैसे इसको इंसान बनाया जाए। तो राजा ने सोचा कि बहुत बड़ा इनाम घोषित कर देते हैं और को जो भी आकर के इसको भेड़िये से इंसान बना देगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा, तो कोई हिम्मत रखेगा इसके ऊपर मेहनत करने के लिए। तो ऐसे ही राजा ने घोषणा की, और एक बहुत गरीब था, बहुत लोग तो नहीं आए, उनको लगा अगर हम नहीं बना पाए तो कहीं राजा हमें फांसी ना दे दे, राजा की सजा से भी डरते हैं लोग। पर एक बहुत गरीब था तो उसने हिम्मत रखी, उसने कहा कि हाँ मैं इसको इंसान बनाऊंगा। तो उसने उसको ट्रेनिंग देना शुरू किया, मनुष्य कैसे बोलता है, मनुष्य कैसे चलता है, कैसे खड़ा होता है। लेकिन इतना आसान नहीं था, महीनों क्या साल लग गया उसको, और छोटी छोटी बातें सिखा। हालांकि मनुष्य की बुद्धि थी तो ग्रहण तो हो रहा था उसको, लेकिन इतना आसान नहीं था, मेहनत लग रही थी उसके पीछे। और इस तरह से 2-3 साल के अंदर, और भी जो फिजियोथेरेपी करने वाले हैं उसके शरीर को सीधा करने के लिए, उनके भी मदद लेनी पड़ी। तो वो थोड़ा सीधा खड़ा होने लगा, थोड़ा मनुष्य की भाषा, कोई कोई शब्द बोलने लगा, और उस तरह से जैसे देखना, बोलना, भाव जो चेहरे पर आते हैं, वो जैसे एक जानवर था पूरी तरह से वो सब दिखाई देने लगा। हालांकि अभी तक भी पूरा परिवर्तन नहीं हुआ था। तो राजा ने कहा कि उसको जो उसको इनाम देना था वो दिया, लेकिन राजा ने कहा कि नहीं, अभी भी इसको और शिक्षा दो, और लायक बनाओ, और फिर ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो एक राजकुमार है, तो इसको राजकुमार के स्वरूप में ढालो, इसकी चलन चाल, चलन बोल चाल रॉयल होना चाहिए। तो देखो ऐसे नहीं कि वो इंसान नहीं था और ये भी नहीं कि वो राजकुमार नहीं था, लेकिन अपने ही ओरिजिनल रूप में आने में उसको इतनी मेहनत क्यों लग रही है? क्योंकि वो भेड़ियों में चला गया, वो भटक गया। तो समझ गए ना कि हम आत्मा है ऐसा नहीं है, और हम भी देवता थे, पवित्र थे, हम भी आनंद स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा है ऐसा नहीं है, ये है। लेकिन उस स्वरूप में आने में बाबा की उस बात को अपने जीवन में हम उतार लें, हम वैसे ही बन जाएं, उसके लिए मेहनत लगेगी नहीं लगेगी? तो बाबा इसीलिए हमें रोज मुरली में कहते हैं, रोज हमें देही अभिमानी बनना, रोज हमें स्वमान मिलता है मुरली के अंदर, और रोज हमें बाबा वो स्मृतियां दिलाते रहते हैं। और इसीलिए बाबा कहता है जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। तो हमें इस बात पर संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, 100% निश्चय होना चाहिए कि बाबा ने जो हमें कहा है वो सत्य है, लेकिन उसका जितना हम अभ्यास करेंगे, उसको घोटेंगे, उसको कहते हैं अपनी घोट तो नशा छिड़े। दुनिया में भी कहते हैं ना, जो दूसरे नशे होते हैं वो भी घोटे जाते हैं, भांग होता है, जितना उसको घोटा जाता है उतना ही उसका नशा चढ़ता है, या वो जो शराब भी बनती है ना, तो वो शराब बनती है उसको भी सड़ाया जाता है, जो भी चीज की शराब बनती है मानो, तो उसको कितना सड़ाते हैं और सड़ाने के बाद फिर वो शराब तैयार होती है। तो जितना उसको पकाते हैं उसमें उतना ही अच्छी क्वालिटी की वो शराब बनती है। तो यहाँ भी जितना हम उसको बार 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 स्मृति में लाएंगे, अब वो तो उल्टे नशे हैं, माना गलत नशे हैं, और वो नशे चढ़ता है तो फिर शरीर पर भी असर आता है, स्वास्थ्य पर भी बुरा असर होता है, और मन भी व्यक्ति का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है उस नशे के कारण, गलत काम कर देता है इंसान, और साथ साथ में समाज में भी बदनामी होती है। अभी हमने सुना ना, एक एक्टर का बेटा वो पकड़ा गया ड्रग्स के केस में, आप सभी को मालूम होगा, अभी तो आप बाहर से आए हैं, मधुबन में भले हम समाचार नहीं सुनते होंगे लेकिन बाहर की दुनिया में होते हैं तो सब समाचार हमारे कानों में पड़ते हैं। तो कितनी इज्जत है समाज में, और जब कोई ऐसे गलत नशों के कारण किसी की गिरफ्तारी होती है तो कितनी बदनामी होती है। बाबा इसीलिए कहता है कि हमको कोई उल्टा नशा नहीं रखना है, लेकिन ये नारायणी नशा है। वो नशे तो बाबा के ज्ञान में आते हैं तो छूट जाते हैं, अगर कोई पहले करता भी होगा मानो तो वो नशे हमारे छूट जाते हैं, लेकिन ये जो नारायणी नशा हमें चढ़ाना है ये शुद्ध नशा है, ये श्रेष्ठ नशा है, और इससे हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनती है, स्व स्थिति हमारी मजबूत होती है, हम उमंग उत्साह में रहते हैं, अपने आप को हम खुश नसीब महसूस करते हैं, एक उड़ती कला का हमारा पुरुषार्थ हो जाता है, क्योंकि ऊंची स्थिति है। जैसे सीट मिल जाती है ना किसी को दुनिया में, बाबा कहता है जो व्यक्ति जब सीट पर होता है, सीट पर सेट होता है, तो उसको उसी अनुसार सभी पेश आते हैं, जैसी उसकी सीट है वैसा ही दुनिया से उसको सम्मान मिलता है और लोग उसकी आज्ञा का भी पालन करते हैं। आज कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो जब तक सीट पर है उस सीट के अनुसार ही उनका सम्मान होता है, उनकी वैल्यू होती है, और अगर सीट से उतर जाते हैं तो फिर वैसा सम्मान तो नहीं रहता ना उनका। हालांकि वो भी अल्पकाल की होती है, फिक्स नहीं होती है, क्योंकि ओपोजिशन पार्टी वाले एक्टिव रहते हैं और जैसे ही उनको मौका मिलता है वो उनको सीट से उतारने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी बाबा ने हमें सोमान की सीट दी है। बाबा ने कहा हमेशा सोमान की सीट पर सेट रहो, लेकिन माया हमारी ओपोजिशन पार्टी की लीडर है तो क्या करती है माया? माया भी हमें सीट से नीचे उतार देती है। हमें पता भी नहीं चलता कि माया ने कब हमें सोमान की सीट से नीचे उतार दिया। दुनिया में भी कोई साधारण भी इंसान होता है ना, तो वो साधारण इंसान को भी अगर ऊंचा ओहदा मिल जाए, जैसे बाबा कभी कहता है कि गरीब होते हैं कोई और उनको अगर साहूकार अडॉप्ट कर लेते हैं, साहूकार अपनी गोद में ले लेते हैं, तो उसको नशा हो जाता है और वैसे ही फिर उसके कर्म होने लगते हैं। अब वो अपने आप को गरीब नहीं समझता क्योंकि अब वो क्या हो गया है, साहूकार का बच्चा हो गया है ना? तो कर्तव्य कर्म में संस्कार में तुरंत अंतर दिखाई देने लगता है। हमने सुना हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो पहले क्या करते थे, पहले चाय बेचते थे रेलवे स्टेशन पर, तो गरीब परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत की, इतनी लगन थी अपने लक्ष्य के प्रति, अपने कर्मों के कर्तव्यों के प्रति कि वो कहाँ पहुंच गए आज? आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो अब जो उनके कर्म हैं, या हम कहेंगे कि अब जो उनकी वो मनस्थिति है, फर्क है ना, कहाँ वो पहले चाय बेचते थे और अब कहाँ इतने ऊंचे स्थान पर हैं, वो संस्कार सब परिवर्तन हो गए। तो बाबा ने हमें क्यों सीट दी है, हमें क्या समझना है अभी इस बात से कि बाबा ने हमें कितनी ऊंची सीट दी है? तो भले ही हम साधारण हैं, देखने में साधारण नजर आते हैं, घर परिवार में रहते हैं, हम साधारण कर्म कर रहे होते हैं, जो दुनिया में सब अपना कर्तव्य करते हैं, लेकिन हमारे मन की सीट कहाँ होनी चाहिए? मन की सीट कहाँ होनी चाहिए? सोमान की स्थिति पर होनी चाहिए। और अगर हम सोमान की स्थिति में सेट होकर के वो कर्म करते हैं तो फिर हम साधारण में भी महान दिखाई देते हैं।
विकराल विनाश खड़ा
जैसे हम ब्रह्मा बाबा के बारे में सुनते हैं कि बाबा भी साधारण कार्य करते थे, मम्मा बाबा बच्चों के साथ बैठ करके सब सब्जी भी काटते थे, अनाज भी साफ करते थे, वो अंगीठी जलती थी, उस जमाने में तो गैस नहीं हुआ करती थी तो उसके लिए जो गोबर के गोले बनते हैं वो भी बाबा बनाते थे। तो ऐसे ही एक बार बाबा जब बच्चों के साथ सेवा यज्ञ सेवा कर रहे थे तो एक कोई वीआईपी वो मिलने के लिए आए बाबा से, तो जो बहन की ड्यूटी थी रिसेप्शन पर उनको समझाने की, तो उन्होंने कहा उसको कि मैंने सुना है कि आपके यहाँ भगवान का दर्शन कराते हैं, तो मैं चाहता हूँ, मैं उसके लिए ही आया हूँ कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, तो आपके बाबा जी कहाँ हैं। तो फिर उसने समझाया उनको कि 7 दिन का कोर्स करते हैं, 7 दिन के कोर्स के बाद ही है ना ये हम आपको मिलवा सकते हैं। तो उसने कहा नहीं मुझे तो मिलना ही है। तो जब थोड़ा सा ज्यादा उन्होंने जोर दिया तो वो गई बाबा के पास और कहा कि बाबा वो ऐसे भाई आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची उनको यहाँ ही ले आओ। तो वो थोड़ा सा आश्चर्य में बोलने लगी बाबा यहाँ ले आऊं, यहाँ कैसे ले आऊं, वो तो कितनी ऊंची भावना से आया है कि मैं भगवान का दर्शन करूंगा तो वो क्या देखेगा कि आप जो है। उस समय रियली बाबा वो गोबर के गोले जो कोयला और गोबर मिक्स करके गोले बनाते ना वो बना रहे थे, तो बाबा वो क्या देखेगा ये। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्ची तुम निश्चिंत रहो उस बच्चे को ले आओ। बाबा तो सबको ही बच्चा कहते थे। उसने कहा ठीक है बाबा ने जैसा कहा है। तो उन्होंने कहा कि आइए हम आपको अपने बाबा से मिलवाते हैं, उन्हीं के तन में परमात्मा प्रवेश होकर के हमको ये ज्ञान देते हैं, योग की शिक्षा देते हैं। तो वो लेके गए तो उन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा और जैसे ही बाबा से उनकी दृष्टि मिली तो वो जो भाई थे उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हो गया। अब देखिए देखने में कितना साधारण कर्म कर रहे हैं बाबा, लेकिन बाबा की स्थिति कितनी ऊंची और महान कि जैसे ही उस आत्मा ने देखा उसकी नजर पड़ी और उसको बाबा ने साक्षात्कार करा दिया। तो बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि कर्म भले साधारण हो लेकिन स्थिति हमारी साधारण नहीं होनी चाहिए, स्थिति महान हो। अब स्थिति महान कैसे होगी, जब हम सोमान में रहेंगे उस ऊंची स्थिति में रहेंगे। मैं कौन सी आत्मा कर्म कर रही हूँ इस शरीर के द्वारा कर्म इंद्रियों के द्वारा, ये स्मृति स्वरूप हमें बनना है। और जो सोमान में रहता है उसे सम्मान अवश्य मिलता है। बाबा कहता है कि सम्मान उसके सामने एक प्रकृति दासी की तरह आता है। अगर स्थिति ऊंची और श्रेष्ठ है तो हमें किसी से सम्मान मांगने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने भी सबको सम्मान में रहकर के सम्मान दिया, यानी हम सम्मान देने वाले दाता होते हैं। एक होता है मांगना और एक होता है देना। तो हम सम्मान में हैं तो हम सबको सम्मान देते हैं और जब हम सम्मान देते हैं तो हमें सम्मान मिलता है। जो हम देते हैं वही लौट कर आता है, ऐसा कहते हैं ना हम। तो वही हमें मिलता है। हमें फिर ये शिकायत नहीं होती कि ये इन्होंने हमको पूछा ही नहीं, ये हमसे कैसा व्यवहार करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, या दूसरों को देखते हैं इनको तो ये बहुत सम्मान देते हैं, हमको तो पूछते भी नहीं है। फीलिंग आ जाती है ना कई बार दूसरों को जब देखते हैं इस तरह से कि इनके साथ ऐसा होता है, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता है। तो बाबा कहता है भगवान ने हमें कितना सम्मान दिया है, उस सम्मान को याद रखो ना। बाबा ने हमें चरणों के दास और दासी से क्या बना दिया, क्या बना दिया, क्या बना दिया, सिर का ताज बना दिया। कहते थे ना भक्ति में, हम तो तेरे चरणों की धूल हैं, यही कहते थे। और सिर लंबा करके दंडवत करते थे भगवान के सामने, तो क्या छूते थे, उसके चरण ही छूते थे ना। तो बाबा ने कहाँ बिठा दिया, आज चरण छूने देते हैं भगवान, हमें चरण छूने देते हैं क्या। तो बाबा ने मस्तक मणि बना दिया, अपने सिर का ताज बना दिया। बाबा कहता है मैं बच्चों को अपने से भी आगे रखता हूँ, मेरी सिंगल पूजा होती है, बच्चे तो डबल पूजे जाते हैं, साकार में भी पूजे जाते हैं और निराकार में भी पूजे जाते हैं। रोज मैं बच्चों को याद प्यार नमस्ते देता हूँ, रोज बच्चों को मैं मालिकम सलाम कहता हूँ। बालक सो मालिक है, बच्चों को बाबा ने क्या बनाया, बालक सो मालिक है। तो फिर जब बाबा ने हमें इतनी ऊंची नजर से देखा, भगवान हमें खुद सम्मान दे रहा है, तो उसके आगे मनुष्य आत्माओं का सम्मान क्या है। ये तो ऐसे है ना जैसे सूरज के आगे दीपक दिखाना, सूर्य उगा हुआ है उसके आगे दीपक का प्रकाश क्या है। तो स्वयं भगवान ने हमें इतना ऊंचा उठाया है, वो हमें स्मृति में लाए, उसने हमें कितना श्रेष्ठ नाम दिया है। आज हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुलभूषण है, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। दुनिया में भी, जो लौकिक दुनिया में भी ब्राह्मण होते हैं, वो तो सिर्फ जन्म के ब्राह्मण है, कर्म के ब्राह्मण है भी नहीं, लेकिन उनको भी कितना मान मिलता है आज के समय में, है ना, कि ऊंची जाति के माने जाते हैं। तो भगवान ने तो हमें सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनाया है। तो जो स्वमान बाबा ने दिए हैं, उनके गहराई में जाकर के उस नशे को अनुभव करना, उस खुशी को अनुभव करना। अब बाबा जैसे हमें कहते हैं, हम बाबा के दिल तख्त नशीन है, तो भगवान के दिल तख्त नशीन होना, भगवान के नैनों के नूर बनना, भगवान के लाडले सिकीलदे बच्चे बनना, डायरेक्ट ईश्वरीय संतान बनना, कितना ऊंचा भाग्य है। हम उसे स्मृति में लाएं कि बाबा ने हमें दिल तख्त पर बिठाया है। फिर हम सोचें दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है, कौन बैठ सकता है दिल तख्त पर, जो आज्ञाकारी है, जो वफादार है, जो सच्चा है। भगवान को कौन से बच्चे पसंद है, सच्चे दिल पर सहवराजी हमें कहते हैं। तो हाँ, जितना हमारे अंदर सच्चाई सफाई होगी, उतना हम बाबा के दिल तख्त पर होंगे। तो बाबा के श्रीमत के प्रति जितने हम वफादार फरमान बरदार हैं, बाबा हमें कहते हैं एक बाप दूसरा ना कोई। ये वफादारी क्या है, एक बाप दूसरा ना कोई, वो भी बाबा के दिल तख्त नशीन है, जो सदा ही एक बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं, जिनका संसार ही बाबा है। तो दिल तख्त नशीन अनुभव करने की विधि, माना आज मैंने ये स्वमान लिया, अमृत वेले ही अपने लिए एक स्वमान ले लो कि मैं बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। तो सारे दिन अलग अलग तरह से अपने आप को बाबा के दिल तख्त नशीन हम अनुभव करें। अब जैसे बाबा कहता है आप बच्चे पद्मा पदम भाग्यवान हो, पद्मा पदम पति हो, तो पद्मा पदम पति का मतलब क्या है, हम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हैं, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हैं, यानी हर कदम में पद्मों की कमाई करना, ये बाबा के बच्चे ही कर सकते हैं। दुनिया में कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई ऐसा बिजनेस कर सकता है? चलो एक दिन में वो करोड़ कमा लेगा, बड़ा बिजनेसमैन है तो हो सकता है कि एक दिन में एक करोड़ की कमाई कर ले, लेकिन एक कदम उठाए और पद्मों की कमाई हो जाए, हो सकती है? तो यहाँ तो हमने बाबा की याद में कर्म किया, बाबा की श्रीमत पर हमने कदम उठाया, या बाबा कहता है आपने अगर पद्म स्थिति में कर्म किया, पद्म स्थिति माना कमल फूल समान न्यारे होकर के आपने कर्म किया, तो आपकी पद्मों की कमाई जमा हो गई। और वो एक जन्म की नहीं, वो जो कमाई होती है ना उनकी, वो तो एक ही जन्म की होती है, वो साथ नहीं ले जाने वाले, कितना भी अरबपति इंसान क्यों ना हो, ले जाएगा साथ में। लेकिन ये जो हमारी अविनाशी कमाई है, ये कमाई कितने जन्म जाने वाली है साथ में? 21 जन्म तो बाबा की गारंटी है, और उसके आगे भी बाबा कहता है 3/4 से भी ज्यादा इस कल्प में हम इस कमाई को साथ में ले जाते हैं। तो ऐसे एक एक स्वमान को हम अनुभव करते हुए उसके नशे को अनुभव करेंगे, कितनी ऊंची प्राप्ति बाबा हमें करा रहे हैं, कितना श्रेष्ठ हमें बना रहे हैं, कितना महान बाबा ने हमें बनाया है। ब्रह्मा बाबा ने सभी को जो सम्मान दिया, सम्मान में रहे और सम्मान दिया, उसके कारण पूरे कल्प भी बाबा को सम्मान मिला। जब लक्ष्मी नारायण थे सतयुग में, तो उनकी जो रॉयल फैमिली थी, प्रजा थी, उससे सम्मान मिला। और भक्ति में जब पूजा शुरू हुई तो भक्तों के द्वारा सम्मान मिला। देखो आज कृष्ण की, नारायण की, बाबा की दोनों रूपों में पूजा होती है, नारायण की भी पूजा होती है और कृष्ण की भी पूजा होती है। आप कृष्ण के मंदिरों में जाकर के देखो, क्या भक्त कृष्ण के पीछे कितनी श्रद्धा से, कितने प्यार से लगन लगाए हुए होते हैं। आप में से कई भाई बहन तो ब्रज भूमि से आए होंगे, है ना, नजदीक है ना वो यूपी और मध्य प्रदेश, तो कृष्ण की भक्ति का प्रभाव वहाँ भी दिखाई देता है। तो कैसे लोग उनकी भक्ति करते हैं, कितना सम्मान है उनका, कि बाबा के बाद जो नेक्स्ट सबसे ज्यादा पूजा होती है वो किसकी होती है? शिव के बाद सबसे ज्यादा पूजा श्री कृष्ण की ही होती है। तो हमारी भी पूजा होती है, ऐसे तो देवी देवताओं के रूप में, अलग अलग कुल देवी कुल देवता के रूप में सभी पूज्य हैं, वो पूज्य सम्मान सभी को मिलता है। और सतयुग में भी जो सम्मान है वो उस स्तर का तो नहीं है जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण को मिलता है, लेकिन वो सम्मान मिलता है। तो पूरे कल्प हम सभी सम्मान के अधिकारी बन जाते हैं। तो बाबा ने संगम युग पर कैसे सम्मान दिया, बाबा ने हमें वो सिखाया, हमें फॉलो फादर करना है। बाबा ने बच्चों को जो सम्मान दिया वो बहुत सम्मान का स्नेह देते हुए बच्चों को योग्य बनाया। हम सभी सुनते हैं बाबा ने बोर्डिंग खोला, जब ओम मंडली थी उस समय फैमिली की फैमिली आ गई, उसमें बच्चे भी थे, तो बाबा ने बच्चों के लिए बोर्डिंग खोला। तो उस बोर्डिंग में बच्चों को जिस तरह से शिक्षा दी गई, जिस तरह से उनका लालन पालन किया गया, वो बिल्कुल शहजादे शहजादियों की तरह उनकी पालना हुई। और बाबा हमेशा उनको देखते थे, ये होवनहार विश्व कल्याणकारी हैं। और सचमुच वो जो बच्चे बड़े हुए वो सभी विश्व कल्याण की सेवा में लग गए, और हमारी कई दादियों ने तो पूरे विश्व का चक्कर भी लगाया। उसके बाद जो कुमार और कुमारी थे उनको बाबा कहते थे ये तो असंभव को संभव करने वाले हैं। आज की दुनिया जिसको असंभव समझती है उसको इन्होंने संभव करके दिखाया है। पवित्रता की धारणा को आज की दुनिया में लोग असंभव समझते हैं, लेकिन इन्होंने इस आयु में, चलो लोग समझते हैं वृद्धावस्था है अभी तो ठीक है, हम सब जो भगवान की श्रीमत है उसका पालन कर सकते हैं, लेकिन युवावस्था में असंभव को संभव करके दिखाना। बाबा ने कहा ये तो महात्माओं के भी सिर झुकाने वाले हैं, नामी ग्रामी आत्माओं को चैलेंज करने वाले हैं, इस नजर से देखा बाबा ने उनको। फिर जो भी बांधेली माताएं थी उनको बाबा ने कहा ये तो योग में नंबर वन है, लगन में नंबर वन आत्माएं हैं, ये तो घर में रहते हुए भी ऊंच पद पाने वाली आत्माएं हैं, इतना सम्मान दिया उनको। होंगे ना कई बांधेली माताएं इसमें। फिर जो बुजुर्ग भाई बहने थे, बुजुर्ग भाई बहनों को बाबा देखते थे कि ये मेरे हमजींस हैं, क्योंकि बाबा खुद वृद्धायु के थे, तो ये तो मेरे हमजींस हैं, ये मेरे ही समान अनुभवी आत्माएं हैं। तो सबको जो भी आत्मा बाबा के सामने आती थी बाबा ऐसे बोल उनको बोलते थे कि उनका उमंग उत्साह बढ़ जाता था, वही बोल उनके लिए वरदानी बोल हो जाते थे। सभी आत्माओं से बाबा इस तरह से व्यवहार करते थे और मिलते थे, यहां तक कि अगर कोई गाली देने वाला भी आ जाए, क्योंकि उस समय बाबा ने बहुत गालियां भी खाई, हम सब जानते हैं उस समय पर जो समाज में विरोध हुआ, तो सामने बाबा के बच्चे बनने वाले भी थे तो गालियां देने वाले भी थे, लेकिन बाबा ने निंदा करने वालों को भी अपना मित्र समझा, उनके प्रति भी सदा शुभ भावना शुभकामना रखी। बाबा ने उनको भी आगे बढ़ाया, यानी उनको भी जो उनके निमित्त उनका जैसे भी कल्याण हो सकता था बाबा ने वो विधि अपनाई उनके लिए। तो हमें भी बाबा की तरह ही जो आत्माएं हमारे संपर्क में आती हैं, क्या करना है, बेगर बनना है या देने वाला बनना है, हम सभी को भी उनको पहले सम्मान देना है। तो फिर स्वतः ही उनके द्वारा बाबा कहते हैं वो एक का 10 गुना होकर के हमारे सामने लौट कर आएगा। जो स्वमान में रहते हैं उनको अभिमान नहीं होता, स्वमान देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जो हमें पूरे कल्प प्राप्ति हुई उसका कारण ये है कि संगम युग पर हमने देह अभिमान का त्याग किया, तब हम स्वमान में स्थित हुए हैं। लेकिन अगर अभी भी अभिमान का अंश है हमारे अंदर तो उसकी निशानियां हैं कि हम अभिमान के वश व्यवहार कर रहे हैं, तो स्वमान में हम स्थित नहीं हो सकते। ये हम कहेंगे रात और दिन की तरह है, अगर अभिमान है तो स्वमान नहीं, स्वमान है तो अभिमान नहीं, जैसे कि रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात नहीं। तो मानो हम कहेंगे कि अभिमान है तो अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी आ जाएगी, किसी ने मुझे थोड़ी सी कोई बात कही तुरंत हम फीलिंग में आ जाएंगे और बहुत व्यर्थ संकल्प चलने लगेंगे हमारे, ऐसा क्यों कहा, ऐसे कैसे ये ऐसे व्यवहार करते हैं, इनको ऐसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और फिर एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, कई दिनों तक उसका असर हमारे दिमाग पर रहेगा, हमारी अवस्था हलचल में आ जाएगी, मूड ऑफ हो जाएगा, खुशी गुम हो जाएगी। फीलिंग आने की निशानी क्या है, बाबा कहता है फीलिंग में आना माना फेल हो जाना। तो ये निशानी है कि अभी भी मेरे अंदर देह अभिमान है। अभिमान कईयों को कई प्रकार का होता है, जैसे अपने गुणों का अभिमान, विशेषता का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, हाँ, या अपना कोई भी ऐसा कर्म, हम जो कर्मों में हम दिखाते हैं कलाएं, हाँ, उसका अभिमान हो सकता है, नाम का भी अभिमान हो सकता है, मेरा नाम बहुत है उसका भी अभिमान हो सकता है। तो जिसको भी अभिमान होगा अगर उसको कोई बात कहेंगे ना तो वो कभी भी उसको मानेगा नहीं, वो अपने को राइट समझता है, कभी भी दूसरे की बात को वो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने को श्रेष्ठ समझता है, दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, तो मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। अभिमान की निशानी क्या है? कभी भी अपने गलती को मानेंगे ही नहीं, चाहे गलती होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, लेकिन मेरी कमी कहीं सामने ना आ जाए, कहीं मेरे को कम ना समझ लिया जाए, कहीं मेरा नाम खराब ना हो जाए, उसके कारण क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। और गलत को भी सही, झूठ बोल करके भी गलत को भी सही करने की कोशिश करेंगे। झूठ का भी सहारा लेना पड़ा तो झूठ का भी सहारा लेंगे। अब हमेशा तो हम राइट नहीं हो सकते, दूसरा भी राइट हो सकता है, क्योंकि हर एक का अपना अपना नजरिया होता है। अब उसके नजरिए से वो राइट है, मेरे नजरिए से मैं राइट हूँ। जैसे मानो हमने 6 लिखा, यहाँ से मैं देख रही हूँ वो, मुझे वो 6 नजर आ रहा है, लेकिन आप उधर से देखेंगे तो क्या नजर आएगा? 9 नजर आएगा। अब आप कहते नहीं ये तो 9 है, और मैं कहती हूँ 6 है, कौन सही है कौन गलत है? दोनों ही सही हैं, वो अपनी अपनी नजरिए से सही हैं क्योंकि उनको वो नजर आ रहा है, और मैं अपनी नजर से सही हूँ क्योंकि मुझे 6 नजर आ रहा है। तो हर बात के 2 पहलू होते हैं, है ना? तो इसीलिए बाबा कहता है कि दूसरे के विचारों को भी हमें सम्मान देना है। अगर कोई अपनी राय दे रहा है तो वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन हमें अपनी बात कहनी है, भले हम कहें वो सम्मान से कहें। तो ये सही विधि है। फिर मानो उनके सामने किसी की तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए, तो जो अभिमानी होगा ना, वो तारीफ को स्वीकार नहीं कर पाएगा, वो तुरंत उसकी कमी निकालेगा, वो बोलेगा आप नहीं जानते इनको, मैं जानता हूँ, और 2-4 बातें जरूर बताएंगे वो, क्योंकि वो अपनी श्रेष्ठता, है ना, मेरी श्रेष्ठता में कमी ना आ जाए। दूसरों की तारीफ हो रही है तो क्या होगा? ईर्ष्या, जिसको हम दूसरे शब्दों में ईर्ष्या का संस्कार कहते हैं, तो वो उनमें अधिक होता है। पर यहाँ भी हरेक की अपनी अपनी विशेषता है, और हो सकता है कि कोई आत्मा का मेरे साथ हिसाब किताब है, इसीलिए मुझे हो सकता है ये अनुभव हुआ हो उसके साथ, लेकिन सभी के साथ उनका हिसाब किताब ऐसा नहीं होता है। दूसरों के साथ उनके संबंध अच्छे हो सकते हैं, होते हैं ना, सभी के सबके साथ संबंध थोड़ी खराब होते हैं। आज उसका मेरे साथ संबंध खराब है, लेकिन दूसरों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती होगी। तो अगर मेरे साथ हिसाब किताब है, इसका मतलब थोड़ी कि वो आत्मा पूरी तरह से ही। तो यहाँ भी बाबा हमें समझाते हैं इस बात को, बाबा हमें कहते हैं कि हमें निर्माण बनकर के निर्माण करना है। उस आत्मा की जो विशेषता है, उस विशेषता को हमें स्वीकार करना है और उसी के अनुसार उसे आगे भी बढ़ाना है। तो जो भी स्वमान वाली आत्मा है, वो चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे छोटे हो चाहे वो बड़े हों, चाहे वो गुणवान हो चाहे उनमें कोई अवगुण है, चाहे वो माया जीत है चाहे वो माया के परवश हैं, लेकिन सभी को वो सम्मान देंगे, सभी को वो सहयोग भी देंगे। यानी उनकी भावना ये होगी कि गिरे हुए को भी हम ऊंचा उठाएं। कईयों का स्वभाव कैसा होता है? गिरे हुए को और गिराना, ये तो है ही ऐसे, इन्होंने कर्म ही ऐसे किए हैं ना, इसलिए कर्मों का फल भोग रहे हैं, जो करेगा वो वैसा ही पाएगा, ऐसे ऐसे शब्द कई बार हम बोलते हैं दूसरों के लिए। लेकिन ये क्या बाबा कहता है, ये सम्मान देना कहेंगे हम? बाबा ने कहा कि मुझे नॉलेज है कि हाँ इन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, हाँ ये ऐसे अवगुण वाले हैं, नॉलेज हो जाती है, लेकिन नॉलेज होते हुए भी कर्तव्य क्या है हमारा, कि उस अवगुण वाली आत्मा को भी मुझे सहयोग देना है, उसके अवगुण को दूर करने में, उसे भी मुझे उमंग उत्साह में लाना है। अभी 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 हमने क्लास सुनी ना, पुण्य आत्मा, कौन पुण्य आत्मा बन सकते हैं, पुण्य करना किसको कहते? दुनिया में पुण्य कर्म करना किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? दूसरों को समय पर सहयोग देना, समय पर उनको सुख देना, उनके दुखों से उनको मुक्त करना, तो ये भी हमको पुण्य आत्मा बनाता है कि हम कभी भी ऐसा रौब का अंश अपने अंदर नहीं रखेंगे, क्योंकि अभिमान का एक अंश है रौब दिखाना कि ये तो कभी बदलने वाले ही नहीं है, ये तो है ही ऐसे, इनका कुछ नहीं होने वाला। तो हम आराम से ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं जो स्वमान वाली आत्मा है वो कभी भी दूसरी आत्माओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी। अब मानो जैसे डॉक्टर हैं, वो बीमारी का इलाज करते हैं, तो जब बीमार उनके सामने आता है तो वो क्या करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं ना, तुरंत उसका इलाज शुरू कर देते हैं या ये पूछने बैठते हैं कि तेरे को बीमारी कैसे हो गई, तू क्यों बीमार हो गया, ऐसी बीमारी होनी नहीं चाहिए, प्रश्नों में चले जाते हैं क्या? तो हमको बाबा ने क्या बनाया है? मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, हम विश्व की आत्माओं के उद्धार मूर्त हैं, हम विश्व की आत्माओं के पूर्वज हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आत्मा सबको प्रेम देने वाली हूँ, शांति देने वाली हूँ, सुख देने वाली हूँ, तो फिर फर्ज क्या बना हमारा, कर्तव्य क्या हुआ? वो कर्तव्य मुझे पालन करना है, सामने वाला कोई चाहे कैसा भी है। तो इस तरह से जो बाबा ने करके दिखाया हमें, जो ब्रह्मा बाबा ने जिस तरह से कर्तव्य किया, उस तरह से हम बाबा को फॉलो करते हैं तो हमारे लिए वो फिर सहज हो जाता है। नहीं तो फिर हमारे पुराने संस्कार काम करने लग जाते हैं। पुराने संस्कार हमने समझा ना, कौन कौन से हमारे पुराने संस्कार हैं जो हमें स्वमान से दूर कर देते हैं और हमें अलबेला बना देते हैं। तो रोज स्वमान के अभ्यास के लिए हम पांच स्वरूपों का अभ्यास करें। पांच स्वरूपों का अभ्यास बाबा हमें कहता है ना, उसमें सारे स्वमान आ जाते हैं। सबसे पहले अनादि स्वरूप में मैं आत्मा, जो बाबा के संस्कार वो मेरे संस्कार, परम धाम में मैं बाप समान हूँ। तो बाबा शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, दुख हरता सुख करता है, सर्वशक्तिवान है, तो मैं आत्मा भी मास्टर प्यार का सागर हूँ, मास्टर शांति का सागर हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, वही मेरा समान, मेरा संस्कार। फिर आदि स्वरूप में देवताई स्वरूप को स्मृति में लाना, उसमें स्थित होना, सतयुग में मैं आत्मा, देवता डबल ताजधारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, प्रकृति संपूर्ण सुखदायी, सर्व प्राप्ति संपन्न, हम पद्मा पदम पति आत्माएं हैं, वो अनुभव करना, उस स्वमान में स्थित होना। फिर द्वापर युग में हम आए, किस तरह से आज देखो वो दृश्य, आज मंदिरों में कैसे पूजा होती है, सब जानते हैं ना कितनी लंबी लंबी क्यू लगती दर्शन करने के लिए, और दर्शन भी कैसे होते हैं, मुश्किल से एक मिनट भी आप खड़े नहीं हो पाते मूर्ति के सामने, कितनी देर खड़े होने का मौका मिलता है भक्तों को। तो आज भी इतना भक्त हमारा गायन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, हमारे दर्शन के प्यासे हैं, वो भगवान ने हमें मूर्तियां, चैतन्य में हम ऐसा बने हैं, तभी तो मूर्तियों का इतना गायन पूजन हो रहा है। तो वो स्मृति में लाओ, अपने उस पूज्य स्वरूप को सामने लाओ। फिर अभी ब्राह्मण जीवन में पूरे स्वमान की माला का सिमरण करना है, जो स्वमानों की माला बाबा ने हमें पहनाई है कि मैं हम वर्तमान में वो ब्राह्मण सो, फिर फरिश्ता और फिर हम देवता बनने वाली आत्माएं हैं। तो रोज निश्चित करना है हर दिन, और अगर कोई स्वमान में हमें लगता है कि मुझे अनुभव नहीं हो पा रहा तो हम उसको लिख करके भी अभ्यास कर सकते हैं। जैसे दुनिया में लोग लिखते हैं ना कि मुझे राम 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 इतनी लाख बार लिखना है, तो चलो लाख बार लिखने की बात नहीं है, लेकिन कम से कम 108 बार कुछ हम संख्या अपने लिए निश्चित कर सकते हैं कि इस स्वमान का अनुभव करने के लिए मुझे इतनी बार इसे चिंतन में लाना है। तो अगर वो यूं चिंतन में मैं नहीं ला पा रही तो हम उसको लिखें, और जब हम लिखेंगे, बाबा कहते हैं ना, हम कदम उठाते हैं, एक कदम उठाते हैं, तो बाबा हमें जरूर उसका अनुभव कराएगा। बाबा बंधा हुआ है हमें मदद करने के लिए, लेकिन हम वो कदम तो उठाएं पहले, तो उस समान को हम अनुभव करें। या हम सारे दिन भर के लिए कोई 5-6 समान ले सकते हैं। अगर एक समान में हमें लगता है नहीं, ये समान बार बार, कई बार लोग एक ही उससे बोर हो जाते हैं, तो फिर 5-6 समान ले लिए मैंने सारे दिन के लिए कि मैं आज इस स्मृति में रहूंगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं बाबा की दिलतख्त नशीन हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं विजयी रतन कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, जैसे हैं और भी हैं, मैं राज ऋषि हूँ, सुदर्शन चक्रधारी हूँ, कोटों में कोई में भी कोई, भगवान की चुनी हुई मैं विशेष आत्मा हूँ। तो ऐसे हर दिन जब हम इन स्मृतियों को अपनी नेचुरल स्मृति बनाएंगे, एक होता है हम साधारण स्मृतियों में रहते हैं, जैसे दुनिया में जो कुछ हमारे साथ घट रहा है, जो भी चल रहा है, उन्हीं स्मृतियों में मेरा मन है, तो स्थिति भी कैसे रहेगी, साधारण रहेगी। लेकिन जो अलौकिक स्मृतियां बाबा ने हमें दी हैं, जो समान दिए हैं, उन स्मृतियों में शुरू में रहने में हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कहानी बताई कि हम वो हैं, लेकिन हम इतना भूल चुके हैं, माया ने हमें इतना भटका दिया है, अपने संग में इतना ले आई है, माना माया के संग का रंग इतना हो गया है कि हम एक आधी बार वो सोचेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जब हम बार 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 उसे स्मृति में लाएंगे, उस पर थोड़ी मेहनत हमें शुरू में करनी पड़ेगी, तो फिर हम वो स्वरूप का स्वयं भी अनुभव करेंगे और हमारे द्वारा दूसरे भी वैसा ही अनुभव करने लगेंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा से सब करते थे। ओम शांति।